ओम शांति।
बाबा का ये स्थापना का कार्य हमारे योग बल से जल्दी संपन्न होता है, आप सब जानते हैं। और योग हमें अपने जीवन में संपूर्ण संतुष्टि देता है। बाबा ने ये हमें कह दिया कि सब प्राप्तियां मेरे से करो। सब में धन भी आ गया, जिसकी सेवाओं में बहुत जरूरत पड़ती है, तन की बीमारियों में सहयोग, जीवन में जिस तरह की प्राप्तियां चाहिए, सहयोग चाहिए, अनुभूतियां चाहिए, योग के द्वारा होती हैं। मैं आप सभी के सामने, आप सभी योग पर स्वयं भी अच्छी अच्छी क्लास कराती हैं कई बहनें, मैं जानता हूँ, कोई नया विषय आप सबके लिए ये नहीं है। मैं कुछ अनुभव युक्त बातें ही आपके सामने रखूंगा संक्षेप में। कुछ ऐसी धारणाएं जिनकी हमें विशेष जरूरत होती है योग की अनुभूतियों के लिए, कुछ बहुत अच्छे से अनुभव जो हमें गाइडेंस देते हैं, और कुछ अलग अलग अभ्यास। कोई भी आत्मा जब ज्ञान में आती है, योग सीखना लक्ष्य होता है। मैं एक बात कहूंगा अनुभव से, योग इतना गहरा सब्जेक्ट है कि उसको हम पूरा जीवन ही सीखते जाते हैं। आपने 2-3 दिन पहले बाबा की मुरली में सुना हो, शायद कल या परसों ही, कि जब मैं राजयोग सिखाकर पूरा कर दूंगा तब विनाश हो जाएगा। कितनी गहराई होगी इसमें। एक है योग अभ्यास करना, और दूसरा है योग युक्त हो जाना, और तीसरा है इन दोनों की जरूरत न रहे। आप सोचते होंगे वो क्या? बिल्कुल, बाबा हमारा साथी और हम उसके साथी, एक नेचुरल स्वरूप हमारा आ जाए, इसके लिए हमें साधनाएं करनी ही पड़ती हैं। जहां योग के लिए हमारे मन में स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, वहीं तपस्या, बार बार अभ्यास, बहुत ज्यादा साधनाएं, बहुत ज्यादा हम इसके लिए कहेंगे जरूरी हैं। क्योंकि मन लंबे काल से भटका है। हरेक के मन के भटकने की गति और उसको स्थिर करने की गति अलग अलग हो सकती है। जो मैं आपको यहाँ बैठ के बात कहूँ, हो सकता है वो चीजें व्यक्तिगत रूप से किसी पर लागू ना हो। उसे स्वयं अपने मन की खोज करनी होती है, मन की स्थितियों की परख करनी होती है कि किस तरह मेरा मन स्थिर, शांत, खुश, आनंदित रह सकता है। क्लियर है ना ये बात? आप में से जो जो बहने सर्वश्रेष्ठ योगी बनना चाहती हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूं तो सबको हाथ उठाना है खुश करने के लिए मुझे, मैं तो खुश हूं आपसे। मैं अपनी सभी बहनों को जो विशेष रूप से जीवन को समर्पित कर देते हैं, ये मेरी अपनी भावना है इस जीवन की, मैं उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। और आप सबको ये कहूंगा, जो चिंतन मेरा था बचपन से, कि जो आत्मा अपने को समर्पित कर देती है और इस लाइफ स्टाइल को स्वीकार कर लेती है जो हम सब ने किया है, उसके अंदर बहुत महानताएं छुपी होती हैं। इसलिए हरेक अपने अंदर छुपी हुई योग्यताओं को, विशेषताओं को, महानताओं को पहचानते नहीं हैं। मेरा अपना अनुभव भी, हमें अपने को पहचानने में देर लगती है बहुत, और अपने को वही जान और पहचान सकते हैं जो अपने में रहते हैं। मैंने आपसे प्रश्न किया, आप में से जो चाहते हैं कि आप इस संसार में संपूर्ण रूप से योग युक्त होकर चमकने लगें, कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत न पड़े, संसार आपके पास आने लगे, वो हाथ उठाएं जरा। हम सभी की ये बहुत श्रेष्ठ इच्छा होती है कि जब हमने अपना जीवन समर्पित किया है तो हम चिंतन करें, अब आप हम सब कुछ प्राप्त करके ही जाएं। मैं शुरू में जब समर्पित हुआ 68 की बात है, मैं लिखा करता था मैं समर्पित हुआ हूँ, किस लिए लिखता रहता था बीच बीच में, क्या करना चाहता हूँ मैं, क्यों मैं छोड़ के आ गया संसार को सब कुछ। मेरा अपनी लौकिक पढ़ाई से बहुत प्यार था, किसी और से मोह नहीं था, पढ़ाई से बहुत ज्यादा। मैं छोड़ के क्यों आ गया, तो बहुत अच्छी प्रेरणाएं आती थी। तो पहली बात, जिसे महान योगी बनना है उसे एक व्रता हो जाना चाहिए। एक व्रता का अर्थ समझ लेना है, हम सब इसको केवल इस भाव से देखते हैं कि जैसे पतिव्रता वैसे एक व्रता, यही इसका अर्थ पर्याप्त नहीं है। एक व्रता माना किसी एक महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्रत ले लेना, केवल उस लक्ष्य की ओर चलना, लक्ष्य के अलावा इधर उधर न होना, यह है एक व्रता। ठीक है, अपने लक्ष्य को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। क्या लक्ष्य लेकर जीवन में चले हैं? बहुत सारे प्रश्न उस दिन आप सबने भी पूछे, हम जानते हैं उनको, कि सभी लोग कहते हैं वे ब्राह्मण परिवार में क्या हो गया है। कोई कहता है पॉलिटिक्स आ गई है, कोई कहता है तेरा मेरा बढ़ गया है, टकराव बढ़ गया है, मैंपन बढ़ गया है, मनी कॉन्सियसनेस बढ़ गई है। ये सब क्यों है, बढ़ गया है, हम भी जानते हैं क्यों ये हुआ है। एक तो कारण हर एक आत्मा का जन्म जन्म का हिसाब और फ्यूचर का पद, जिसका जैसा भविष्य है उसी तरफ उसके कदम स्वतः ही चलते हैं, हम ज्ञान से जानते हैं। आत्माएं क्योंकि एक व्रता नहीं रही हैं, लक्ष्य भूल गया, जबकि बाबा ने मुरलियों में अभी 2-3 साल की मुरलियों में सब कुछ स्पष्ट कह दिया, आपको बड़ा होना है अब और वहीं जाना है जहां बड़ी बहनें पहुंची हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि हम यदि अपने सेंटर में धन भी चाहते हैं तो वो योग बल से प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम सम्मान चाहते हैं वो अपनी स्थिति से प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम चाहते हैं हमारे यहाँ स्टूडेंट 1000 हो जाएं सेंटर में तो भी हम स्थिति से प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम चाहते हैं हमारे संगठन में बहुत प्यार का वातावरण हो जाए, हम अपनी दृष्टि बदल कर वो सब कर सकते हैं। लक्ष्य भूल गया, लक्ष्य भूल कर इधर उधर हम चले गए। हमने देख लिया हमारे पास एक बहुत सुंदर कार हो, बहुत बड़ा सेंटर हो, बहुत पैसा हो, बस जीवन सफल हो गया। बाबा ने पिछले सीजन में, इससे पिछले सीजन में स्पष्ट लाइन बोल दी थी कि जो साधनों को साधना की प्राप्ति समझते हैं वो अपने को धोखा दे रहे हैं। याद होगा आपको, सेवाओं के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, जिसे योगी बनना है उसे सभी संकल्प छोड़ देने चाहिए। एक व्रता। दूसरी चीज, जिसे इस महान लक्ष्य को पाना है उसे बातों से परे हो जाना चाहिए। बातें बहुत हैं संसार में, कौन क्या कर रहा है ये अगर हम जानना चाहेंगे तो हमें क्या करना है ये भूल जाएगा। अब तक भी मुझे यज्ञ में रहते हुए 35 साल हो गए, मुझे ये पता नहीं होता कहाँ क्या हो रहा है। आप सोचेंगे इससे काम कैसे चलेगा, चलता है इससे काम बहुत अच्छा। हमने बाबा को अच्छी तरह जानने का प्रयास किया है, वो क्या क्या सोचता है ऊपर बैठ के। मैं बहुत सोचता हूँ इस बात पे, वो क्या क्या सोचता होगा ऊपर बैठ के, हमें भी वही सोचना है, वो भी तो सब कुछ देख रहा है। दूसरा, जीवन का बहुत सुंदर अनुभव एकांत। मेरे अपने लिए तो एकांत इस जीवन का वरदान रहा है, पर मैं ये कहूंगा सभी के लिए वरदान है। जिसे योगी बनना है, बाबा से बहुत अच्छी बातें करनी है, उसे एकांत जरूर चाहिए। हमारे लिए एकांत बहुत सुंदर है, यहाँ पहाड़ियों में आप सबके लिए वैसा स्थान नहीं मिलता, फिर भी आप चाहेंगे तो अपने कार्य को उस तरह से मैनेज करके समय निकाल सकेंगे और एकांत का आनंद लेंगे। मैं अपने से एक प्रश्न पूछता रहा हूँ, क्लासेज में मैंने वो बात कही है, अपनी मेरी ये प्रैक्टिस थी कि तुम्हें इस समय बातों का सुख लेना है या प्रभु मिलन का। क्योंकि जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं। बातें हमारी बुद्धि को विचलित कर देती हैं, मन को स्थिरता समाप्त करा देती हैं। तो मैं अपने को पूछता रहा हूँ, बातों का सुख चाहिए या बाबा के साथ रहने का? एक ही मिलेगा। जब वो गीत हमारे यहाँ बजता था, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया उसने ही तुझको पाया है ना गीत? बाबा के समय यही गीत बजते थे। तो मैं सोचता था कि सब कुछ छोड़ना तो हमारे लिए कॉमन बात है, ये बातों का रस, इधर उधर देखने का रस, कौन क्या कर रहा है इसका रस, ये हमें ईश्वरीय रस से दूर ले जाता है। ये बहुत सुंदर धारणा है। जिसको अपने को महान योगी बनाना है, दुनिया में भी कहते हैं, उसे आंख बंद करके चलना चाहिए। हम तो आंख खोल चुके हैं, इसका अर्थ तो आप समझ ही गए। आंख बंद करके उसे इस संसार की किसी भी बात में रुचि न हो, वो योगी बन सकते हैं। क्लियर विजुअलाइजेशन, हमारी विजन बहुत अच्छी बनने लगे योग में। जैसा कि बहुतों का प्रश्न रहता है, समस्या रहती है, विजन तो सभी समझती है ना बहने, एक चित्र हमारे मन में बनता ही है ना। हमें परम धाम का अनुभव करना है तो परम धाम का चित्र हमारे सामने आता है। सुख संवतन का करना है तो वहाँ का आता है, वहाँ रहने वाला बाबा हमें स्पष्ट दिखाई दे यहीं से, ये हमारे अनुभूतियों की सर्वश्रेष्ठ आधारशिला बनती है। स्पष्ट दिखाई दे, बाबा ऊपर है सुख संवतन में। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम बहुत हल्के रहते हों। अब ये और अगली बात है, हम हल्के रहते हों, हम काम काज में रहते हैं, सभी सेवाओं में रहते हैं, आपके पास कहीं ज्यादा सेवा है, अब छोटी बहने हैं, आपको ज्यादा काम करना ही पड़ता होगा, छोटों से सब ज्यादा काम लेते हैं, होता है ना ऐसे। हम भी जब छोटे थे बहुत काम हमसे लिया जाता था, हम क्या सोचते थे कि ये काम नहीं है, हमारी कमाई है, ये सोचते ही नहीं थे कि बहुत काम है। और ये अनुभव होता रहा कि हिम्मत से काम करते हैं तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। बाबा ने मुरलियों में भी स्पष्ट कर दिया और सबका अनुभव होगा, थोड़ा थोड़ा भी योगयुक्त होकर काम करते हैं तो ऐसा लगेगा ईश्वरीय शक्तियां हमारे साथ काम कर रही हैं। मैं जो अपनी क्लासेज में आजकल बहुत कहा है, बाबा का आह्वान कर लो, बाप दादा का, उसे बुला लो, ये कल्पनाएं नहीं है। मेरे 2 साल से इसके इतने सुंदर अनुभव हैं जो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। इसलिए मैंने कहा कि योग का तीसरा अनुभव रहेगा बाबा और हम, कुछ अभ्यास नहीं, उसको बुला लो, उसकी शक्तियां हमारे साथ काम करने लगेंगी। जो कार्य हमें भारी पड़ रहा है वो उसे कह दो और अच्छा अनुभव होने लगेगा। योग को एक खेल बना लेना, मनोरंजन बना देना, ये कला हम सबको सीखनी है। तो कर्म क्षेत्र पर हल्के रहना, और हल्के वही रहते हैं जिनका मन सभी तरह की उलझनों से मुक्त है। मुक्त, मुक्त रखना अपने हाथ में है, उलझाना वो भी अपने ऊपर, मुक्त रखना वो भी अपने ऊपर, हम क्या चाहते हैं। और जो एक बार उलझ गया क्या होता है, चक्रव्यूह है ना ये, जो उलझ गया उसकी मृत्यु अभिमन्यु की तरह निश्चित है। अनुभव है बहुतों के, जिसने अपने को उलझा लिया लक्ष्य को छोड़कर, वो ज्ञान योग से मृत्यु, रहेंगे तो यहीं पर सुख नहीं पाएंगे। ये सब कुछ धारणाएं हैं कर्म क्षेत्र की बात, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे लंबी चौड़ी चर्चाएं हम कर सकते हैं, अभी नहीं, परंतु सभी चिंतन करेंगे कि हम जो सवेरे से शाम तक सेवाओं में रहते हैं उसमें हम हल्के रहें, अच्छी फीलिंग्स में रहें, हमारी भावनाएं दूसरों के लिए अच्छी रहें। बाबा की एक बहुत अच्छी बात कि हम अपने को विष्णु समान समझकर ऐसा संकल्प करें कि हम तो पालना कर रहे हैं, हम अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं, इसलिए मेहनत हमें करनी पड़ेगी। दूसरों के साथ हम रहते हैं, हमारे टकराव ना हो, टकराव है तो योग नहीं, ये भी हमें स्वयं सोचना है क्या करें हम। और इसमें एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि हम एक दूसरे को महानता की दृष्टि से देखें। ये गड़बड़ सब जगह होती है क्योंकि हम साथ रहते हैं, एक दो को बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना, ये बहन रूसती है, ये जल्दी रो लेती है, इसको फीलिंग बहुत आती है, ये गुस्सा बहुत करती है, बोलती बहुत है, पुरुषार्थ अच्छा नहीं करती, एक दूसरे को जानते हैं ना, इसलिए महानता की दृष्टि खत्म हो जाती है। लेकिन महानताएं तो इसके बाद भी बहुत है ना, कमी तो छोटी छोटी है, बहुत छोटी छोटी कमी है। ये जो बाहरी चीज हमें दिखाई देती है ना, ये कमी छोटी है या बड़ी बताओ? ये जो बाहर की दिखाई देती है वास्तव में छोटी है। बड़ी क्या है विशेषताएं? पवित्र जीवन अपना लिया, बहुत बड़ा त्याग कराए हैं, संसार की सभी इच्छाएं छोड़ दी हैं, ये छोटी बात है? संसार के लोगों को पता लगे तो वो आप सभी के चरणों में अपना सिर काट के अर्पित कर देंगे, ये तो होना ही है। तो हम अपनी महानताओं को और दूसरों की महानताओं को देखकर जरा एक दूसरे के प्रति दृष्टिकोण बदलें। दृष्टिकोण जो आप सबको भी सारे संसार को सिखाना है, दृष्टिकोण बदलना, एटीट्यूड्स बदलना, कि सभी महान आत्माएं हैं, हमारे साथी इष्ट देवियां हैं, इन दो चीजों का आप अभ्यास कर लो जरा, तो आपके संगठन में माहौल योगयुक्त हो जाएगा, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। जिनको अच्छा योगी बनना है उन्हें अपनी भावनाएं और दृष्टिकोण ऐसा श्रेष्ठ रखना ही होगा। तो छोटी बातों को छोटा करके छोड़ दो, बहुत मानताएं हैं सभी में, उस पर जरा नजर डालेंगे तो संगठन सुखदायी होगा, तब हमारा योग अच्छा रहेगा। योग अभ्यास, किस किस को हम योग कहते हैं, बाबा की मुरलियों से हम सब जानते हैं। पहला अभ्यास हमारा देह से न्यारा होने का होता है, इससे सोल कॉन्सियसनेस बढ़ती जाती है, आत्मविमानी स्थिति बढ़ती है। दूसरा अभ्यास हमारा स्वमान का होता है, जिसको स्मृति स्वरूप होना भी कहा जाता है, जो बहुत सुंदर स्थिति है। तीसरा अभ्यास हमारा जिसको बाबा कहते हैं सब संबंधों के सार की याद, जिसको एक शब्द में कहा जाता है बाबा मेरा है, इसकी बहुत सुंदर फीलिंग्स, बहुत अच्छा चिंतन है ये। और फिर फरिश्ता स्वरूप, बिंदु रूप, और उसके बाद आजकल जो बाबा कह रहे हैं दो तीन साल से सकाश देना, फिर सब ये स्थिति आती है। अपने संकल्प से दूसरों के संकल्पों को बदलना, अपने वाइब्रेशंस देकर दूसरों को मदद करना, बहुत कुछ क्रिएट करना अपने वाइब्रेशन से, फिर ये सब स्थिति आती है। इन सब में दो चीजों पर हम बहुत ध्यान दें, विजुअलाइजेशन, देखना, आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करें आप, दूसरों को आत्मा देखने की और स्वयं को। मैं शुरू में अपने जीवन में 69 में जब बाबा व्यक्त हुए, बहुत अच्छा माहौल हमारे यहाँ था पुरुषार्थ का, वैराग्य के कारण, क्योंकि हमें लगता था कि अभी संसार ज्यादा समय नहीं चलेगा, तो बहुत वैराग्य था बाबा के जाने के बाद। तो मैं बाहर बैठकर, जहाँ निर्भय भाई का ऑफिस है ना, वो जो थल्ला सा है स्टेज, वहां बैठ के बहुत अभ्यास करता था। जो वहां से जा रहे हैं ये सब चमकती हुई मणियां हैं, केवल मणि ही दिखाई दे, और ऐसा अभ्यास कि केवल आत्माएं दिखाई दें, जैसे ये दुनिया केवल आत्माओं की दुनिया है, स्थूल दुनिया नहीं है। इसकी बहुत प्रैक्टिस करने से विजुअलाइजेशन, आत्मा को देखना स्पष्ट होता जाता है। ये आप अभ्यास करेंगे जब आप सेवाओं में होते हैं, दूसरों को मुरली सुना रही हैं, किसी को कोर्स करा रही हैं, कहीं भाषण करने गई हैं, तो कम से कम एक एक बार, ये तो संभव नहीं होता कि सारा समय वो ये अभ्यास करते रहेंगे, लेकिन एक एक बार बिगनिंग में ये चमकते हुए हीरे हैं ऐसा देखेंगे उन्हें, केवल सोचना नहीं, भ्रकुटी के बीच देखना, और फिर साथ साथ मैं भी यहाँ चमकती हुई मणि हूँ इसका अभ्यास बढ़ाना। आप इस प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, इस अनुभव को बढ़ाने के लिए एक एक दिन चुन लिया करें बीच बीच में, चाहे आप बिजी हो या इजी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने बताया था कि मैं कईयों से अभ्यास कराता रहता हूँ, जिनका बिल्कुल योग नहीं लगता, कि भाई एक दिन के लिए आप कम से कम 50 बार अपने को यहाँ आत्मा देखो, 10 सेकंड हर बार, 10 सेकंड, बस जस्ट चमकती हुई मणि देखी, 10 सेकंड भी ना हो तो 5, केवल 5 से शुरू करो, 50 बार देखो तो शाम तक मन शांत हो जाता है। और विजुअलाइजेशन, आत्मा को देखना स्पष्ट होता जाता है। ये एक छोटी सी टेक्निक आप अपना सकते हैं इस अभ्यास को बढ़ाने के लिए। दूसरा विजुअलाइजेशन, ये इंग्लिश शब्द तो समझते ना, विजुअलाइज करना, देखना। दूसरा हमें अभ्यास करना चाहिए फरिश्ते स्वरूप को देखने का। हम दूसरों को देखा करें, अपने को देखने से इजी है दूसरों को देखना। आपके सामने कोई व्यक्ति है, आप देखो कि फरिश्ता उसके अंदर से निकलकर सिर के ऊपर खड़ा है। हम लोग अपने ग्रुप्स में 10-15 साल से इसकी बहुत प्रैक्टिस की है। दूसरों को देखेंगे, सभी के शरीरों में सूक्ष्म शरीर है और वो निकल गया बाहर, आत्मा सहित ऊपर खड़ा है, प्रवेश कर लेता है। फिर ऐसे ही हम इस शरीर से बाहर निकल जाते हैं, सूक्ष्म शरीर से प्रवेश कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत करने के बाद फरिश्ते स्वरूप को देखना बहुत इजी होने लगता है, और तब सूक्ष्म वतन में बाबा को देखना और सरल हो जाता है। ये दोनों तपस्या हमको पहले करनी चाहिए, तपस्या बना दें आप इसे। तीसरा विजुअलाइजेशन है बाबा को देखना, शिव बाबा को, उसके ज्योति स्वरूप को, उसके सर्वशक्तिवान स्वरूप को। ये अलग अलग शब्द हम यूज करेंगे, कभी वो ज्ञान सूर्य है उसको, तो बहुत क्लियर दिखने लगेगा। और सवेरे जब आप योग अभ्यास करें, शाम को करें, नींद भी नहीं आएगी। तो ये तीनों प्रैक्टिस आप करते रहें, 5 सेकंड आत्मा को देखा, 5 सेकंड अपने फरिश्ते स्वरूप को देखा, तीसरी प्रैक्टिस 5 सेकंड ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते स्वरूप को देखा, फिर चौथी शिव बाबा के स्वरूप को देखा, फिर नीचे से ऊपर। इसमें यदि आप केवल 5 बार कर लेते हैं, देखिए 2-3 मिनट का ही काम होगा, मन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, कोई थकान, नींद आना, ये सब समाप्त हो जाएगा। इससे हमारी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, देखने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। भक्ति में आपने सुना हो या देखा हो, आजकल वो सभी चीजें खत्म सी हो गई हैं, पर जब किसी को किसी मंत्र की दीक्षा दी जाती थी या अब भी दी जाती है, तो एक एक मंत्र एक एक देवी और देवता से जुड़ा होता है। मंत्र के उच्चारण के साथ, मंत्र के रिपीटेशन के साथ उस देवी या देवता का ध्यान भी किया जाता है। यदि वो नहीं किया जा रहा है तो सफलता नहीं मिलती। ये सब टेक्निक यहीं से सीखी हैं। मन से हम चिंतन करते हैं और बुद्धि से उस स्वरूप को देखते हैं। दोनों की प्रैक्टिस हमें योग में बढ़ानी चाहिए और यही नयों को सिखानी चाहिए। कोई व्यक्ति आपके पास कोर्स करने आया है, उसको आप कह दिया करें कि 10 बार अपने को आत्मा देखना है, 5-5 सेकंड, तो उस व्यक्ति को एक काम भी मिल जाएगा और जरूर कुछ ना कुछ अनुभूति होगी और उस अट्रैक्शन से वो अगले दिन खींचा खींचा आएगा। अशरीरी होने के लिए एक ही बात कि हम इस अनुभूति तक चलेंगे कि मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है, और इसके लिए स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। स्वदर्शन चक्र क्या है आपको कहने की तो जरूरत नहीं है, पर वो केवल याद करना मात्र नहीं है कि हमने इतने इतने जन्म लिए, वो वहां वहां पहुंचने के लिए है। हम यहां से चलें, मैं जैसे अभ्यास किया इसका बहुत समय से, जब सोते हैं उससे पहले बहुत अच्छा किया जा सकता है कि अब मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूं, इससे पहले किसी और शरीर में थी, पीछे की तरफ चलेंगे उससे पहले किसी और शरीर में, उससे पहले और में, कभी मेल बॉडी में कभी फीमेल बॉडी में, शुरू तक पहुंचे देव शरीर में थी, ऊपर से उतरी थी। ये गहरा चिंतन सुदर्शन चक्र है, इससे अशरीरीपन हो जाता है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी ही चाहिए एक बार तो रोज अवश्य, चाहे आप योग में बैठ के करें चाहे सोने से पहले करें, बहुत ही अच्छी अनुभूति इससे होती है। ये देह से न्यारापन हमारे संकल्पों को शांत कर देता है, बुद्धि को स्थिर कर देता है, ये बहुत जरूरी है। ये सब चीजें हैं अशरीरीपन की। आगे चलें, स्वमान जो बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको ऐसा कह सकता हूं बहुत क्लियर एक बात कहूंगा, हम सब बहुतों से मिलते रहते हैं, हम विशेष रूप से, स्वमान को हमारा ब्राह्मण परिवार बहुत कम जानता है, बहुत कम। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी स्वमान के महत्व को नहीं समझते, बल्कि मैं जब स्वमान पे ज्यादा क्लास कराता हूं तो मुझे भी कहते हैं क्या स्वमान स्वमान स्वमान, ये कोई योग है क्या? मुझे सब सुनना पड़ता अच्छे अच्छे लोगों से, छोटों से नहीं। मैं कभी कभी उन्हें याद दिला देता हूं कि आप व्यक्त मूल्यां तो सुनते हो सभी, जरा ध्यान से सुन लिया करो क्या कहता है भगवान। इस बार 9 मुरलियां चली थी, 10 अव्यक्त बाबा की, हर मुरली में स्वमान पर जोर था, और आपको याद हो आखिरी मुरली या उससे पहली में था, जो स्वमान की सीट पर सेट हैं उनका जिम्मेदार है बाबा, और जो अपसेट हैं वो तुम जानो। सीधी बात थी ना बाबा की, जो स्वमान की सीट पर सेट हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया हैं। आप सब मुरलियों से पॉइंट नोट करो, मुझे बहुत, मेरे पास एक बहुत अच्छा वरदान रहा है इस जीवन में पहले से ही, कि मुझे बहुत गहरी सब बातें पकड़ में आ गई हैं, शुरू से ही साकार मुरलियों से ही और अव्यक्त से भी। आप सब भी ऐसा करें, बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या क्या कहा है आज तक, स्वमान के लिए क्या क्या कहा है, प्योरिटी के लिए क्या क्या कहा है, वाइब्रेशंस के लिए क्या क्या कहा है, मुरलियों से ढूंढ लो। हम तो अपने यहाँ भाइयों को बहुत ये काम देते हैं, सब लोग लग जाते हैं, सारी मुरली सूची में देखा किस मुरली में क्या है और पॉइंट्स इकट्ठे किए, बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। ज्ञान की जितनी गहराई और स्पष्टता हमारे पास होगी, योग हमारा उतना ही अच्छा होगा। तो स्वमान की प्रैक्टिस सभी बहुत अच्छी बढ़ाएं, और मुझे स्वमान के प्रति सबसे पहला अट्रैक्शन हुआ था बहुत ज्यादा 74 की मुरली में, जब बाबा ने एक छोटी सी लाइन कही, स्वमान में स्थित होना ही संपूर्णता है। तब मुझे लगा कि ये कोई बहुत जबरदस्त चीज है, साकार मुरलियों में ये शब्द कम से कम आया था, नशा आता था, तुम्हें ये नशा हो ये नशा हो, हमें बहुत नशा रहता था। रात्रि क्लास में एक दिन सुन लिया बाबा से कि बच्चे, वो वही महावाक्य मैं सुनाता हूँ, भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है, तुम्हें तो इतना नशा हो कि दिमाग की नस फट जाए, नस फट जाएगी तो खेल ही पूरा हो जाएगा। पर बाबा ये क्लियर कर रहे थे कि इतनी बड़ी चीज है और तुम्हें नशा नहीं रहता, तुम कैसे हो? छोटी सी चीज मिल जाए हमें, जरा सी अच्छी गिफ्ट मिल जाए, हम खुश हो जाते हैं, भगवान मुट्ठी में आ गया और तुम्हें नशा नहीं हो रहा है। तो स्वमान की बात पर सभी अच्छी तरह ध्यान देंगे, बाकी आप सब ढूंढ लेंगे। और स्वमान का अभ्यास और अनुभव तभी होता है जब हम एक एक पॉइंट लेके उस पर चिंतन करते हैं। मैंने जो कुछ किया था वो ये कि एक एक पॉइंट लेकर उस पर मैं एक एक दो दो पेज लिखता था। ये लिखने की जो प्रैक्टिस है ये हमारी उन्नति का बहुत अच्छा साधन है। कोई ये न सोचे कि हम कम पढ़े लिखे हैं, हमारी बुद्धि चलती नहीं। आप कागज और पेन लेके बैठ जाओ, कुछ भी लिखो, कुछ भी। पहले दिन आप कुछ भी लिखो, नहीं समझ में आए तो मैं आत्मा हूँ, यशोदा भी आत्मा है, राधिका भी आत्मा है, बाबा लिखता था ना, वही लिखने लगो, हमारे सेंटर की ये बहन भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, तो भी शुरू हो जाएगा काम। गाड़ी को स्टार्ट कर दो एक बार। इसलिए ये किसी को सोचना नहीं है कि हमसे चिंतन नहीं होता। सब में चिंतन करने की योग्यता है ही। जब आत्मा में मन है तो मन में चिंतन शक्ति है। केवल संकल्प शक्ति मन नहीं है, चिंतन शक्ति भी उसमें है। इस चिंतन शक्ति का विस्तार करो, पढ़ो और लिखो, स्वमान अच्छा हो जाएगा। और हमें तो यहां तक अपने स्वमान को पहुंचाना है। मैं कौन हूं बोलो, अंतिम स्वमान हमारा, मैं बाप समान हूं, जिसके बाद कुछ नहीं बचेगा। और जो इस स्वमान में रहना सीख लेंगे, बाप समान स्थिति, बाबा के लक्षण उनके जीवन में आते जाएंगे। अगली बात जिसका हमें योग में बहुत अच्छा अनुभव करना है, बाबा मेरा। मैं तो अपने अनुभव से ये कहता हूं कि बीज रूप से भी सुंदर अनुभव इस चिंतन से होगा कि मेरा कौन है भगवान, मेरा दोस्त, मेरा सदगुरु, मेरा जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो, जिनका भगवान आकर बन गया हो, वो क्या होंगे। चिंतन चलाएं इस पर एकांत में। तो योग से संबंध में मैं ये बात और जोड़ दूं कि हम अपने मन को एकाग्र करने की खींचातान कभी न करें। ये खींचातान है, योग नहीं लग रहा, वही कहते हैं जो मन को एकाग्र करने के लिए हठ पूर्वक बैठ जाते हैं, चिंतन करें। इसलिए मैंने अपने लिए एक अच्छा स्लोगन तैयार रखा है, श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा सभी संकल्पों को समाप्त करना। हमें संकल्पों को समाप्त करने की जरूरत नहीं, हम अच्छे संकल्प रचें, बाकी संकल्प शांत हो जाएंगे। बाबा मेरा है इस बात की बहुत अच्छी रूढ़ियान बाबा से करें। फ्रेंड बनाकर, साथी बनाकर, कोई भी संबंध जोड़कर उससे बातें करें, क्या क्या तुमने हमें दिया है, बहुत आनंद आएगा। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद दो जगह आया है बहुत। एक आनंद था सवेरे मुरली सुनने में, और वो भी जब दादी सुनाती थी। दूसरा आनंद शाम के समय एकांत का। मैंने अपने पूरे जीवन में, चाहे कितनी भी व्यस्तता रही हो, दो घंटे तो रोज निकाले ही हैं शाम को। हमारे यहां एकांत अच्छा है, उसमें बाबा से बातें, भिन्न भिन्न तरह के योग अभ्यास, उनका सुख बहुत ज्यादा मिला है। सवेरे के समय से भी ज्यादा सुख मुझे इन दो समय में प्राप्त हुआ है। सवेरे केवल बिंदु रूप होता है, मन शांत रहता है, कभी थकान भी रहती है, बिल्कुल स्पष्ट बात, बहुत काम हो गया हो थकान भी रहती है। शाम को भी फ्रेश, मुरली के समय भी फ्रेश। मुरली के समय मुझे बहुत अच्छे अभ्यास हो गए थे, भिन्न भिन्न अभ्यास तो करते ही रहे, लेकिन ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे रहकर मुरली सुनना बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। मैं तीनों काम कर सकता था उस समय, सुनना, लिखना और किरणों के नीचे रहना। ये अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है। बस यही सब बातें हैं, इसके बाद हमारा योग अभ्यास बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। इतना ही कहना है मुझे, आप सब तैयार हो जाएं अभ्यास करने के लिए। मैं वैसी कमेंट्री नहीं दूंगा जैसी आप दिया करते हैं, ये इनको कमांड्स कहते हैं। सभी अपने अपने मन को देंगे। पहला अभ्यास हम करेंगे, दृष्टि लेने की जरूरत नहीं, सभी अपने में मगन हो जाएंगे, बिल्कुल अपने में। सबसे पहले चलें, अपने को स्थित करें भ्रकुटि के बीच, केवल अपने स्वरूप को, मैं चमकता हुआ हीरा मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं, हरे रंग की। मैं चमकती ज्योति परम पवित्र, मुझसे चारों ओर पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही हैं, सारा संसार इन किरणों से भर गया है। मैं शक्तिशाली आत्मा, माइट हाउस, मेरे शरीर के अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं, लाल किरणें। मैं दुर्गा, सभी दुर्गा बन जाएं, अष्टभुजाधारी, अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित, सिर के पीछे घूमता हुआ पवित्रता का ताज, चक्र घूम रहा है सिर के पीछे चारों ओर। मैं दुर्गा, भक्तों की इष्ट देवी, शिव शक्ति। मैं दुर्गा, मेरे दोनों नैनों से और भ्रकुटी से आत्मा से किरणें फैल रही हैं चारों ओर सारे संसार में। मैं दुर्गा, मेरे चारों ओर शक्तियों का घेरा, शक्तियों के सर्किल के बीच में। अब मैं आत्मा यहां से निकलकर चलती हूं परमधाम, धीरे धीरे चमकती हुई ज्योति उड़ती जा रही है घर की ओर। पहुंच गए स्वीट साइलेंस होम में, मुक्त अवस्था, केवल मैं आत्मा। सामने दिख रहे हैं ज्ञान सूर्य बाबा, देखें बाबा को बिल्कुल स्पष्ट। बाबा की किरणें, तेजस्वी किरणें फैल रही हैं चारों ओर। ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं, हम दोनों जुड़ जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, मैं आत्मा बाबा से कंबाइंड। उसकी संपूर्ण शक्तियां मुझ में प्रवेश कर रही हैं। यहां से अब मैं आत्मा, चमकती हुई मणि, नीचे उतर रही हूं, चारों ओर प्रकाश फैलाती हुई, और प्रवेश कर लिया अपने देव शरीर में। मैं दिव्य शरीर में हूं, सिर पर डबल ताज, सिंहासन पर विराजमान, चारों ओर स्वर्ग की छटा, प्रकृति का सौंदर्य जगमगाते महल, देव शरीर से निकलकर मैं आत्मा पुनः इस शरीर में भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान। पॉइंट ऑफ एनर्जी, सूक्ष्म बिंदु, शरीर मानो है ही नहीं, केवल मैं। अब मैं आत्मा, अपनी सूक्ष्म ड्रेस पहन लेती हूँ, फरिश्ते शरीर में हूँ, लाइट के शरीर में, लाइट हाउस। मैं लाइट हाउस फरिश्ता, मस्तक में चमकती मणि और नीचे प्रकाश का शरीर, अंग अंग से फैलता हुआ प्रकाश। अब मैं फरिश्ता यहां से उड़कर चला ऊपर की ओर, आकाश मंडल में हूं। नीचे से अनेक भक्त मेरे फरिश्ते स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। मैं फरिश्ता आकाश में, मेरे ऊपर बाबा से पवित्रता की सफेद किरणें पड़ रही हैं। मुझसे ये पवित्रता की किरणें नीचे फैल रही हैं संपूर्ण विश्व में। ओम शांति।